तो हम प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, इसको श्रील प्रभुपाद इस भागवतम के श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते थे, नित्यम भागवत सेवया। तो ये जो भागवत दो प्रकार की हैं, एक भागवत है ग्रंथ रूप में और दूसरे भागवत क्या है, जो ग्रंथ में दी हुई भगवत भक्ति का जो रस है उस रस को आस्वादन करने वाले वैष्णव है। तो ये श्रीमद् भागवतम भी दो प्रकार की चर्चाओं से भरी हुई है, कथाओं से भरी हुई है, एक तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्तों का। तो कभी कभी अवसर आता है तो उन महानुभाव रसिक संतों भक्तों की जीवन की चरित्र को आस्वादन करने के लिए हमको अवसर मिलता है, क्योंकि ये सब रसग्राही व सारग्राही भावुक रसिक भक्त हैं। तो जिनकी कथा को व जिनके चरित्र को श्रवण करने से भक्ति भाव का उदय होता है, और चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान ब्राह्मण को उपदेश दिए और कहे, यदि तुमको भागवतम समझना है तो जाओ वैष्णव के पास और उनको एकांत आश्रय करके उनसे भागवत सुनो। भागवत पर गया भागवत स्थान। चलिए, ये उपदेश स्वरूप दामोदर ने दिए थे, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। तो आज दोनों महाभागवत भगवत भक्त काशीश्वर पंडित और भूगर्भ गोस्वामी, इनके आज तिरोभाव हैं। तो संक्षेप में श्रील प्रभुपाद की कुछ कोटेशन हैं काशीश्वर पंडित के बारे में, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो काशीश्वर पंडित हैं, जिनकी जन्मस्थान कालकटे के पास है और ये हैं बल्लभपुर, जहाँ पर श्री श्री राधा गोविंद देव और चैतन्य महाप्रभु की विग्रह है, और वृंदावन में भी ये दोनों विग्रह भी गोविंद देव के साथ चैतन्य महाप्रभु के विग्रह भी हैं। आप लोग कितने लोग दर्शन किए हैं वृंदावन में गोविंद देव के पास चैतन्य महाप्रभु की विग्रह है, बहुत धन्यवाद। तो इसके पीछे भी कथा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की विग्रह गोविंद देव के साथ हैं और क्यों चैतन्य महाप्रभु गोविंद देव के साथ पूजा किया जाता है। तो पहला उनकी वंशज परंपरा है, वासुदेव भट्टाचार्य की पुत्र हैं काशीश्वर पंडित, और उनकी गुरुजी कौन है, कौन बता सकता है, चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी कौन है, ईश्वरपुरी। तो काशीश्वर पंडित की भी गुरु है ईश्वरपुरी। तो और ये काशीश्वर पंडित विख्यात है, किसमें विख्यात है, शारीरिक बल में। उनके पास इतनी शारीरिक बल था कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर आकर्षक गौरांग विग्रह को देखने के लिए लोगों का इतने भीड़ हो जाता था, तो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे मैं कैसे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करूं, इतनी भीड़ है और सन्यासियों को स्त्री का शरीर टच नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी हैं, तो इस धर्म को निभाने के लिए बक्रेश्वर पंडित क्या करते थे, अपने शारीरिक बल में अकेला ही उस भीड़ को हटाते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु बहुत आसानी से श्री जगन्नाथ देव की दर्शन कर पाते थे। और ये काशीश्वर पंडित की एक विशेष कार्य क्या है, जो भक्त कीर्तन करते तो कीर्तन की पश्चात क्या होता है, कथा के बाद कीर्तन के बाद क्या होता है, प्रसाद वितरण होता है। तो काशीश्वर पंडित की ये सेवा थी कि कीर्तन के पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण करना, ये महान कार्य करते थे। तो ईश्वरपुरी की ये मुख्य सेवक थे गोविंद और काशीश्वर। आप लोग जानते हैं कि जो बाद में गोविंद चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सर्वेंट बने, निजी सेवक। तो ये ईश्वर परिपाद की जितने सब शिष्य हैं, तो इन शिष्यों में से ये जो दोनों थे गोविंद और काशीश्वर, ये पर्सनली व व्यक्तिगत रूप से ईश्वर परिपाद की सेवा करते थे। जब ईश्वर परिपाद की भगवत धाम गमन हुआ तो ईश्वर परिपाद ये दोनों को आदेश दिए, आज्ञा दिए कि तुम दोनों श्री चैतन्य की सेवा में नियुक्त हो जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की पश्चात जब जगन्नाथपुरी में आए तो उनकी गुरु की कहने पर व गुरु के आदेश था, इसलिए उन्होंने गोविंद को पर्सनल व व्यक्तिगत सेवक के रूप में स्वीकार किए, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के अंग वस्त्र को पर धोना, प्रसाद रखना, बहुत कार्य करते थे, ध्यान रखते थे। आप लोग थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, बहुत स्पेस खाली है। थोड़ा पीछे आने वाले को थोड़ा स्थान दीजिए। तो ये काशीश्वर पंडित कंजीलाल कानू, जिनकी पूर्वज थे, उनकी वंशज हैं, ये कोई प्रसिद्ध वैष्णव होंगे, इसलिए श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में इनकी वंश परंपरा दिए हैं। और ये काशीश्वर पंडित की बहन की बेटा, इसको क्या कहते हैं, भांजा बा भतीजा, तो उनका नाम था रुद्र पंडित। ये रुद्र पंडित ये मुख्य पुजारी हैं, कहां पर मुख्य पुजारी है, बल्लभपुर के जो राधा गोविंद और चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह हैं वहां के मुख्य पुजारी हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज इस विग्रह को कई बार दर्शन करने के लिए गए, और हम जब गृहस्थ थे, प्रभुपाद कहते हैं अपनी जीवनी के बारे में, हम जब गृहस्थ थे तो कालकाटा से वो नज़दीक है, मेदिनीपुरी के पास है, तो वहाँ वो जाया करते थे, और उस मंदिर के विग्रह इतनी आकर्षक हैं, दूर से देखते ही कोई भी साधारण व्यक्ति उस विग्रह के प्रति आकर्षित हो जाता। और उसके पास श्रीरामपुर जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर एक जगन्नाथ मंदिर है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम जब दर्शन करने के जाते हैं तो वहाँ भी हम जाया करते थे, जगन्नाथ मंदिर, और वहाँ की प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, और जितनी बार प्रभुपाद गए दर्शन करने के लिए प्रसाद लिए हैं, और कहते हैं कि वहाँ की प्रसाद जो है, जो राधा गोविंद को लगता है बा जगन्नाथ जी को, अलग से जगन्नाथ मंदिर थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी पर है, 1 माइल दूरी पर, तो जो राधा गोविंद के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए जो कुकिंग होता है, 9 किलो चावल रोज और बहुत सारी सब्जियां, कहते बहुत स्वादिष्ट होता है प्रसाद। तो यदि कोई जाए तो अवश्य वो प्रसाद का आस्वादन करना चाहिए। तो ये जो श्री विग्रह कैसा है, वृंदावन में इसकी कथा है कि जब रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु भेजे लुप्त तीर्थ के उद्धार करो और सनातन गोस्वामी का आदेश दिए वैष्णव शास्त्र को रचना करो और वैष्णव की जो व्यवहार के विषय में पुस्तक रचना करो। तो जब पहले रूप गोस्वामी आए वृंदावन और वो मधु पंडित के साथ जब परिक्रमा करते थे, आप जानते हैं कि किस प्रकार सरलता से उनको विग्रह सब प्राप्त हुआ। ऐसे भूगर्भ गोस्वामी हैं राधा दामोदर मंदिर में शैल चिकन के नाम से। तो ये श्री विग्रह की प्रकट करने के लिए बहुत मेहनत नहीं किए, बल्कि उनकी जो भक्ति भाव है, जो भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, अनन्य प्रीति है, जो पुकार है, इससे विग्रह स्वतः ही प्रकट हुए। परिक्रमा करते हुए द्वादशपन की नाम को उच्चारण करते थे और भगवान के नाम को रोते हुए पुकारते थे। इनके पुकार को सुनकर के ठाकुर जी स्वयं श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता चला कि वृंदावन में गोविंद देव प्रकट हुए हैं, तो काशीश्वर पंडित को भेजे, तुम जाओ रूप गोस्वामी को हेल्प करो, सहायता करो। परंतु काशीश्वर पंडित रोक टोक मना कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। अरे बड़ी मुश्किली बात है, सेवक को स्वामी की बात को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है। परंतु काशीश्वर पंडित की हृदय के भाव को चैतन्य महाप्रभु समझते थे। सेम चीज लोकनाथ गोस्वामी के साथ हुआ था, गदाधर पंडित के साथ हुआ था। गदाधर पंडित को कहे जाओ तुम क्षेत्र सन्यासी हो, पुरी में रहो। गदाधर पंडित कहे मेरी सन्यास भाड़ में जाए, परंतु मैं आपकी संगति नहीं छोड़ सकता। ये है भक्त की उत्कंठा विरह, कभी एक क्षण के लिए प्रभु को त्याग नहीं कर सकते, ये भाव है। तो काशीश्वर पंडित की भी इस प्रकार के भाव है, चैतन्य महाप्रभु के विरह को एक क्षण के लिए सहन नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने अनुरूप स्त्री विग्रह को प्रकट करके काशीश्वर को दिए। और काशीश्वर किसी भी प्रकार का है कि अभिन्न स्वरूप है, जैसे अंबिका कल्ला में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की दो अभिन्न विग्रह हैं, गौरीदास पंडित को दिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात, तो इसी प्रकार इनको दिए। और ये विग्रह को वो जब वहाँ जगन्नाथपुरी से लेके आए, तो रास्ता में ऐसे भिक्षा करते थे और विग्रह को खिलाते, और जो कुछ भोग लगाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु सब कुछ खा लेते, एक भी कण नहीं छोड़ते। उनके लिए कुछ बचता नहीं था कि प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, स्पेस है, कि मैं इस विग्रह से अभिन्न हूं और विग्रह से कैसे हम प्रीति करना चाहिए। जैसे अंबिका कल्ला में गौरीदास पंडित ने जो कुछ भोग लगाए, 12 प्लेट भी अभी तक लगता है, तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रॉमिस किए कि दोपहर का जो भी कुछ भोग लगाओगे हम खाएंगे। ऐसे प्रेमी भक्त। तो यहां जब आए तो चैतन्य महाप्रभु उस विग्रह का भी नामकरण किए थे कि उसका नाम रखना क्या है, राधा गोविंद विग्रह, और जो कुछ भोग लगाओगे मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो काशीश्वर पंडित के इस प्रकार प्रेम को चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते थे। और फिर जगन्नाथपुरी का आप लीला सुने हैं, तो ये जो दोनों पार्षद थे ईश्वरपुरी पाद के, गोविंद और काशीश्वर, ये कृष्ण की दोनों पर्सनल सर्वेंट थे कृष्ण लीला में। एक हैं भृंगुर, जो काशीश्वर पंडित हैं, ये भृंगुर सेवक दास्य भाव में सेवा करते थे, साख्य भाव में, दास्य भाव में। और जो गोविंद थे वो थे भागुर, भागुर दास्य दास इनके भाव था। तो आज के दिन खासकर वहां तो लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में पूर्णिमा के दिन उन्होंने महाराज जिस समय चल रहा था तो उसी समय उन्होंने शरीर छोड़े थे, त्याग किए थे, आज उनकी तिरुभाव तिथि है। तो हम लोग इस अवसर पर उनकी कृपा को जांचना करना चाहिए, प्रार्थना करने की यही उद्देश्य होता है, लक्ष्य यही है कि हम लोग उनकी जो प्रीति है एक कण हमारे हृदय में संचार करे व प्राप्त करें। नहीं तो कृपा के बिना कोई भगवत भक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार हम थोड़ा समय बहुत कम है, मैं संक्षेप में भूगर्भ गोस्वामी के बारे में बतलाऊंगा। तो ये जो भूगर्भ गोस्वामी ये प्रेम मंजरी है कृष्ण लीला में, और वो सबसे प्राचीन वैष्णव हैं वृंदावन की। ये सड़ो गोस्वामी के पहले भी आए थे भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, सीनियर भी थे उनसे, वयोज्येष्ठ थे। तो चैतन्य महाप्रभु किसी प्रकार जब समझा करके उनको भेजे तो भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के साथ उनके बहुत बड़ा मैत्रीता था, और वो गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो ये रूप गोस्वामी के आने की पहले इन्होंने ये जो छैल चिकन जो राधा दामोदर मंदिर में है, आप लोग देखे ना कौन से विग्रह हैं वहाँ, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा छैल चिकन और राधा वृंदावन चंद्र कोट, चार विग्रह के साथ ललिता देवी विराजमान है। तो ये जो राधा छैल चिकन है वो भूगर्भ गोस्वामी के हैं। तो इनकी जो समाधि है ये कहाँ पर है, रूप गोस्वामी की समाधि के पास है। आप लोग देखे हैं भूगर्भ गोस्वामी का समाधि राधा दामोदर मंदिर में, परिक्रमा जब करते हैं तो रूप गोस्वामी का समाधि के पास बीच में तो उनकी तो जो लीला है वैष्णव की लीला, हम तो जो कुछ सुनते हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत विस्तार लीला भी हैं कि कैसे वृंदावन में भजन साधन करके भगवान की प्रीति को प्राप्त किए। तो आज भी उनकी तिरुभाव तिथि है भूगर्भ गोस्वामी की। भूगर्भ गोस्वामी तिरुभाव महामहत्सव की जय, काशीश्वर पंडित तिरुभाव महामहत्सव की जय। आइए आज हम इस भागवतम के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राणेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। पुरीं विहाय उपगता उपारुद्ध भुजंगमः जदा तमे बानुपुरी विसिर्ना प्रकृतिं गता पुरीं विहाय उपगत अवरुद्ध भुजंगमः जदा तमेवानुपुरी विसिर्ना प्रकृतिं गता पुरीं विहाय उपगत उपरुद्ध भुजंगमा जदा तमेवानुपुरी विसिर्ना प्रकृतिं गता। शब्दार्थ बोलिए, थोड़ा से समय नहीं है, क्षमा चाहते हैं। पुरीं नगरी को विहाय छोड़कर उपगत चला गया, उपरुद्ध बंद हो गया, भुजंगमा सर्फ जदा जब तम उसको एवा निस्सही अनु पीछे पीछे पुरी नगरी विसिर्ना ध्वंस विधस्त हो गया, वा तहस नहस हो गई प्रकृतिम पदार्थ में गता परिणत हो गई। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। वह सर्प भी जिसे जबन राज के सैनिक ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी की बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सब ने नगरी को छोड़ दिए, त्यों ही वह नगरी तहस नहस वा ध्वंस विध्वंस्त होकर धूल में मिल गया। तात्पर्य, जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर प्राण इंद्रियां तथा विषय पदार्थ की पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा तथा उसके साथी प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता है, वो अपने मूलभूत तत्व खिति जल पावक गगन तथा समीर हवा में परिणत हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करता है, नगरी पर बराबरी करके उसे तहस नहस कर देता है, तब हम कहते हैं तुम धूल और धूल में मिल जाओगी। तो हमारा प्रयोजन शरीर से ही होता है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है और उस पर बराबरी हो जाता है, बमबारी हो जाती है, तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चल जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगर की वासियों की परवाह किए बिना नगर को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीव भी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है बाह्य शरीर की रक्षा करता है। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा निरंतर देहांतरण से बच जाता है। जो हमारे देहांतरण होता है, परिवर्तन होता है इस शरीर में, और फिर एक शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे शरीर शुरुआत होता है। इस प्रकार देहांतरण को रोकने के लिए क्या उपाय है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जो लोग अपने शरीर के प्रति अधिक अनुरक्त हैं, उन्हें श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? गधा वा गाय। गधे तथा गाय के समान मानती है। स एव गो खर। गाय अत्यंत अबोध पशु है, हालांकि वो दूध देती हैं, घास खाती हैं, सिंपल लाइफ है, वो किसी की नुकसान नहीं करती हैं। कहते हैं जो जितना सरल होता है इसको कहते हैं ये गाय के जैसे है, परंतु इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि आत्मा के विषय में जाने। ये सरलता आपको भव सागर से पार नहीं कर सकता है। और प्रभुपाद कहते थे सिंपलसिटी डज नॉट मीन द फुलिसनेस। सरलता का मतलब नहीं है निर्बोधता। इसलिए गाय जैसे नहीं बनना है, बा गधा जैसे बहुत भार ढोता है। इज ए मस्ट क्या कहते हैं करियर, गुड्स करियर। सबसे मेहनती पशु है घोड़ा और गधा। गधा के ऊपर कितनी भी लोड डाल दो वो चलता है, परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है जिनकी बुद्धि इतना उन्नत नहीं है वो गधे और गाय के समान है। जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रादिसु इच्छजति। जत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेसु अभिज्ञेसु सैव कोखरम्। अभिज्ञेसु जनेसु स, हालांकि वो बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है, समाज में अपने को विज्ञ के रूप में, सबसे चालाक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, परंतु इनकी आचरण को गधे बा गाय के समान कहा गया है। क्यों? ना उनकी आत्मबुद्धि किसमें है? कुणैपे, अर्थात ये शरीर रूपी बुरी में है, एक बोरा है ये शरीर, इसमें कफ वात फित इंग्रेडिएंट भरी हुई है, और उसमें वो आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात उसको शाश्वत रखने के लिए, उसमें आनंद लेने के लिए, शरीर से आनंद लेना। जय ही संस्पर्श जा भोगा दुख जो ने ये बते। शरीर को स्पर्श करके, शरीर की सुंदरता को देख करके, शरीर को अनेक प्रकार के भोजन खिला करके वो आनंद लेना चाहते हैं। जा भोगा, इस प्रकार भोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और शरीर को ही शाश्वत मानने वाले यह रहेगा, इस प्रकार धारणा में वशीभूत व्यक्ति कुणे पे त्रिधातु की, तीन धातु है कफ वात फित, उस धातु में भरी हुई शरीर को आत्मा मानता है, बस शाश्वत मानता है, क्योंकि आत्मा के लक्षण है आनंद, और वो इस शरीर से आनंद लेना चाहता है। और स्व अधि अपने स्वजन संबंधी जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, कलत्र आदिशु, ये स्वधि हैं, अपना लोग हैं, कलत्र आदिशु, और देश को वो पूज्य मानता है, इज्जति। किसको इज्जति मानता है? भौम, जिस भूमि पर वो जन्म लिया है। तो ये भूमि शब्द भी हैं, जो भूगर्भ गोस्वामी के बारे में आया था तो उनका नाम इसलिए भूगर्भ था कि वो ऐसे नहीं सोचते थे कि मैं भूमि पर जन्म लिया हूं इसलिए मेरे देश पूज्य हैं, मेरे देश महान है, सोच है 99 बेईमान है फिर भी मेरे देश महान है, लेकिन भूगर्भ को समय ऐसे नहीं सोचते थे। इसलिए वो भजन करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भू का मतलब है भूमि पर, गर्भ मतलब उसके अंदर जाकर ही भजन करते थे, कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये गधे और गाय के समान अनभिज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं? देश के झंडा उड़ाते हैं, मेरी देश महान है, पूज्य है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये कैसा है कि जैसे लोग घर में बीमार पड़े हैं और सरकार क्या कर रहा है, उनके लिए पूरा साफ सुथरा रास्ता बना रहे हैं, सुगंधित पानी छिड़का रहे हैं, अरे भोजन के बिना वो मर रहे हैं घर में, अब रास्ता सफा करने से, सड़क को सजाने से क्या उनकी दुख की निवृत्ति हो सकती है? तो ये सब क्या है? ये है गो और खर, गधे की बुद्धि है, लेकिन अपने को बहुत अभिज्ञ समझते हैं। जल में आचमन कर लेते हैं, जब तीर्थ बुद्धि, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, तो मनुष्य शरीर सार्थक होगा तीर्थ यात्रा करने से, इसलिए धाम यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन उनकी तीर्थ यात्रा का एम्स और मोटिव क्या है? पानी में नहा लेना। हाँ, जमुना में नहा के आ गए, अच्छी बुद्धि है। हाँ, जैसे गाय पवित्र रहती है। परंतु यदि साधु जन की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, आत्मज्ञान के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, भगवत भक्ति के संबंध में, तो उनकी तीर्थ बुद्धि सलीले, पानी में ही स्नान करके आना, वो क्या है? वो गाय की समान है, गो। और अभिज्ञेशु, वो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सारे लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो गधा भी सोचता है, देखो मालिक ने मुझे कितनी इज्जत करता है, मेरी पीठ पर इतने भार ढोके चलता है। और कभी कभी प्रभुपाद और तात्पर्य जी में लिखते हैं, नवमांग दुष्कृति नव मूढ़ा प्रपदंती नराधमा माया पौत ज्ञान असुरम भाव आश्रिता। ये जो चार प्रकार के व्यक्ति में, उसमें देते गध, खर, स्विष्ट क्या है, विष्ट खरे संस्तुत पुरुषम पशु भागवतम की। ये श्लोक में भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कहते ऐसे गधे कभी कभी गीता की दर्शन के बारे में भी चर्चा करते हैं, लोगों को बहुत उपदेश देते हैं। तो जैसे गधा भी गीत गाता है, तो गधा की गीत को भगवत गीता की प्रवचन वाचना के साथ तुलना की गई। लेकिन ये गधा के आवाज को सुनकर के गधी ने लात मारती है, कभी देखे ना, दुलती मारती है गधी, और गधा को आनंद मिलता है उससे। लेकिन प्रभुपाद उस गधे परंपरा को नहीं सिखाए, टी और मी, बेच दिए, गीता की प्रतियों को बेच दिए, प्रभुपाद कंप्रोमाइज नहीं किए। परंतु गधे समाज ये सोचते हैं, ईस्ट योर वेस्ट, माय होम इज द वेस्ट, यही है प्रियजन के साथ रहना, कुछ भी कर, ये तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में बात है। तो इन तीन तत्वों से, बाकफ वात फित से मिलावटी शरीर को आत्मबुद्धि करके व्यक्ति समाज की प्रगति, देश की प्रगति और शरीर की सेहत बढ़ाने के लिए प्रयास, ये जो है, ये सब क्या है? गधों और गायों के समान है। और प्रह्लाद महाराज कहते हैं, तत्प्रयास न कर्तव्यम जथायु भय परम न तथा बिंदते क्षेमं गोविंद चरणारविंदम। वास्तविक क्षेम यही है, मनुष्य जीवन की जो कहते ना जोगो क्षेम है, जो प्रोटेक्शन और क्षेम ये है जो प्राप्त करना है, वो है भगवत कृपा, गोविंद की चरण। किंतु मूढ़ाधी जिनकी बुद्धि ऐसे गधे जैसे हो गया है, वो कभी भी कितनी लोग समझाएं, साधु लोग घंटे घंटे प्रवचन करें, माइक्रोफोन टूट जाए, है ना, मृदंग टूट जाए, प्रसाद की प्लेट भी खाली हो जाए, परंतु ऐसे लोग की बुद्धि कभी सुधरती नहीं है। क्यों? मतेर्न कृष्णे परतो सतोवा, क्योंकि उनकी मति कृष्ण में नहीं है। परतः स्वतः अपने आप भी नहीं है, दूसरे समझाने पर भी उनकी अकल नहीं होती है। आओ उसकी गति क्या होती है, पुनः पुनः चर्बिता चर्बणा अदांत गो भी, क्योंकि इनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वो कैसे ज्ञान को धारण कर सकते हैं। इसलिए बार बार चुवा होकर फिर चुबाते हैं, और ये काम है किसकी, सोन की। गन्ना से रस निकलने की बात सुखाली फेंका जाता है ना, उसको खाने में कौन आनंद लेता है, सोन। और एक ऊंट का भी उदाहरण देते हैं, जो कांटा को खा करके उनकी खून को खोद पी करके सोचता है बहुत टेस्टी है, कांटा में कोई रस नहीं होता। ऐसे लोग हैं गधे और ऊंट के समान। तो कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है हो सकता है। ऐसे सभ्यता मृत शरीर बा सब की अध्ययन करे और मस्तिष्क का हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान न हो। गायों और गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जन मृत पुरुष की मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि जो ब्रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, शरीर का सबसे मूल्यवान वस्तु है। लेकिन ये जो ब्रेन है जिसको हम कहते हैं दिमाग, वो किसके साथ जुड़ा है, हार्ट के साथ। और ये जो हार्ट है ये किसके स्थान है, जहां पर आत्मा निवास करता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, और परमात्मा भी वही निवास करते हैं। तो श्लोक के प्रारंभ में नारद जी यही कह रहे हैं कि पूरीम विहाय उपगतम, ये शरीर को पूरी कहा गया है जिसमें पुरन जन दो जन निवास करते हैं, एक आत्मा एक जन है, दूसरा जन कौन है, अपना स्वजन है परमात्मा। ये जब उपगत छोड़ देते हैं और ये जो आत्मा की तुलना किससे दी गई है, ये जो सर्फ है भुजंगम जो भुज पर ही चलता है, ये बंदी था, ये शरीर में बंदी था, अभी भी है बंदी है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या है, कंडीशन सो बद्ध आत्मा। अभी तो बद्ध है, लेकिन जब बात छोड़ के चल जाता है, जदा तम ए बह अनुगता पूरी, इस घर को जब वो छोड़ देता है तो क्या होता है, प्रकृतिम विसिन्नगता, जो जो अलग अलग चीज हैं, ये पूरी जो घर बना हुआ है ईंट पत्थर बालू सीमेंट से बना करके पंचभूत है, ये क्या होता है, डेड, इसका कोई मूल्य नहीं है। और हमारे सामने ये सत्य हमेशा ही आता है। अभी जगत जीवन प्रभु के प्रभुपाद डिसाइपल थे, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी शरीर पूरा हो गया अभी दो दिन पहले। श्रीनाथ प्रभु जो एनडी देसाई सबसे बड़ा इंडिया में धनी माने जाते थे, है ना, बहुत, और परम पूज्य राधानाथ महाराज की शिष्य ही से, तो प्रभुपाद से मिले थे वो, तो उनके अनुगत में थे। तो कल एक फरीदाबाद भक्त बता रहा था कि जब उनका बॉडी आया तो उस बक्स पर लिखा हुआ था, दिस इज द बॉडी ऑफ डॉक्टर एनडी देसाई, दिस बॉडी केवल रह गया है। और जैसे हम घर को छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम ताला लगा के जाते हैं ना, खुला छोड़ के जाते हैं, ये लक हो जाता है, और इसकी कोई एक्टिव नहीं होता है। जो इंद्रियां अभी जो कार्य कर रहे हैं इसके सगी संबंधी हैं आत्मा के साथ, और विषय है इंद्रियों के, सो विषय है जो अलग अलग तरह से हमको आकर्षित करते हैं, ये देखो अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर व्यक्ति है, आकर्षित होते हैं, अरे ये अच्छा चीज खा लो। जो इंद्रियां घोड़े की तरफ हमको घिसट रहे हैं, ये तुरंत इनके सारे कार्य ठप हो जाता है। अवरुद्धम, बस अभी लक लगाओ, हो गया पूरा। तो ये एनालॉजी इस प्रकार समझना चाहिए, परम सत्य को समझने के पहले ये हमारे लिए जो है जातस्य ही ध्रुवम, ये ध्रुव सत्य, ये मृत्यु के सत्य को समझना चाहिए, और इससे ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। पुत्र दार गृहादिशु, इस विषय में जो हमारे आसक्ति है, ये आसक्ति को इस प्रकार काटा जा सकता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। पहला ये दर्शन, ये फिलोसफी पढ़ना चाहिए, ये दर्शन को देखना चाहिए। फिर दूसरे दर्शन है भगवत दर्शन, भवतो दर्शनं जस्सत अपुना भवदर्शनम। पहला भवदर्शन कर लो, फिर ये भवदर्शन को देखना ना पड़े तो प्रभु की दर्शन करना है। तो इसलिए प्रभुपाद ने सिंपल सिस्टम ये किए, प्रभु के दर्शन के लिए प्रसाद, प्रभु की साक्षात दर्शन, ये थ्योरी। लेकिन समाज अभी किस दर्शन पर चल रहा है, डेड बॉडी को सजाने के लिए। किसी का राजकुमारी की देहांत हो गया, तो राजा था तो अपने बेटी को सजाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर गहना, और शोभा यात्रा, एक शोभा यात्रा होता है, एक शोभा यात्रा, शोभा यात्रा निकाले, और किसका यात्रा है, डेड बॉडी का यात्रा। तो इससे क्या है, श्रील प्रभुपाद एक नीति शास्त्र से ये श्लोक कोट करते हैं, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तपः अप्राणस्य शरीरम मंडनम लोकरंजन। ये सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए है, देखो कितनी सुंदर सजावट हुआ है, लेकिन प्राण नहीं है। कितने भी अच्छा अच्छा गहना में सजाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, है डेड बॉडी, और थोड़े समय की बात उस जो शरीर को सजा गया है उसके पास भी नहीं बैठ सकते, दुर्गंधी आ जाता है, उसको हटाओ, घर से थोड़े समय रखने के बाद ले जाओ, मुर्दा हो गया है। जो व्यक्ति ने इतनी सुंदर सजावट करके घर को रखा था, कितना इतर गुलाल, कितने सुंदर सुंदर सुगंधि से सजाया था, और आज वो शरीर से इतने दुर्गंध निकल रहे हैं, उसको हटाओ, डेड बॉडी कहा करें, और ये सत्य होती है। परंतु अज्ञानता क्या है, इसको हम समझने पर भी देखने पर भी हमारे विवेक का उदय नहीं होता है। क्यों, एक मिथ्या आकर्षण पड़ी है। इसलिए कपिल देव कहते हैं इस फॉल्स अट्रैक्शन को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनम कवयो विदु सैव साधु सुकृत मुक्त द्वारम अपावृतम। यदि आकर्षण से मुक्त होना चाहते हैं, वो सेम अट्रैक्शन, सेम अटैचमेंट एक शुद्ध वैष्णव के प्रति, साधु के प्रति डेवलप करना चाहिए, तभी हम इस पुरी से बाहर निकल करके अपने स्थान में पहुंच सकते हैं। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति है, ध्रुव महाराज को सद्य मुक्ति मिली, तुरंत इस माया पर विजय प्राप्त की, काल पर विजय प्राप्त कर ली, काल की ऊपर फेर रख करके, सर पर फेर रख करके भगवत धाम यात्रा की, ये है विक्टोरी, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये भगवत भक्ति की ही शक्ति है कि हम काल पर, प्रकृति पर, जो जो चीज को हम कभी जीत नहीं सकते, अजीतो जीतो अपी, लेकिन एक भक्त जीत सकता है। जैसे भगवान को जीतना कठिन है, भगवान की शक्ति को भी जीतना कठिन है, मम माया दुरत्तया, परंतु एक भक्त भक्ति की शक्ति पर भगवान को भी जीत लेता है, काल को भी जीत लेता है, कर्म की बंधन व श्रृंखला को तोड़ देता है, प्रकृति के गुण को भी तोड़ करके बाहर निकल जाता है। यही प्रकृति से बना हुआ ये शरीर को सियार कुत्ते इसको नोच नोच कर खाते हैं, हम लोग उसको सेव करके लेके जाते हैं हाँ कि इसको गाड़ दें अच्छे स्थान में, बस जला दें। लेकिन वो ना होने पर क्या होता है स्थिति, कहते तहस नहस हो जाता है पूरी। तुम कभी देखे थोड़े से अपमान होने पर हम क्या होता है हमारी स्थिति। हाँ, दो प्रकार के शरीर के बंधन से बंधी हुई है आत्मा, सूक्ष्म शरीर का आवरण और स्थूल शरीर, ये अहंकार। तो ये जो एनालॉजी है हाँ नारद जी पुरंजन को दे रहे हैं हाँ, ये है हमारी भगवत भक्ति को क्या करता है, भक्तिर्भवति नैष्ठिके, कि भक्ति वास्तविक है वैराग्य विद्या। जितने हम डिटेच होते हैं तो उतना ही हम भक्ति को धारण कर पाएंगे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, भक्ति कर रहे हैं और उसका सिम्टम्स भी यही हैं कि हम कितना वैराग्य को प्रति करते हैं। और इसकी एक शिक्षा होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणम, चैतन्य महाप्रभु इसलिए शिक्षा को प्रवर्तन किए, उनकी शिष्यों को भेजे जाओ इस वैष्णव शिक्षा को प्रवर्तन करो, केवल धाम को प्रकट नहीं करना है। इसलिए धाम की महिमा ये है, तिष्ठन ब्रजे तदानु रागी ब्रजानु का इति नयत काल उपदेश सार। रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने आए इस धाम को प्रकट करवाने के लिए, वैष्णव शास्त्र की रचना किए, उन्होंने यही कहा कि उपदेश के सार यही है, धाम में रहते हुए हाँ संतों की संगति प्राप्त करके इस भाव को वृद्धि करना चाहिए। ज्ञान के साथ वैराग्य का अस्त्र, ज्ञान के अस्त्र के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। हृष्ट ज्ञान सिनात्मना, हाँ ज्ञान एक अस्सी है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, ये डेटाचमेंट है जिसके सहारे हम हाँ इस अज्ञान की ग्रंथि को काट सकते हैं, ये मिथ्या आकर्षण को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अंतर निष्ठा लोको बाह्य व्यवहार, बाहर के व्यवहार को भी निपुण रहना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जो निष्ठा को दृढ़ किया है वो ही बाहर व्यवहार कर सकता है। तो आज की इस श्लोक की ये निष्कर्ष है कि प्रकृतिम गता, हाँ प्रकृति की फिर अंदर चल जाता है। जो माया प्रकृति ने इस शरीर को दिया है, नष्ट होने के बाद फिर आत्मा अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार, गता गतम कामा कामा लभंती, जो काम रह गया है, जो इच्छा रह गई है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए पुनः फिर ऐसे भौतिक शरीर मिलेगा, फिर माँ के गर्भ में हमको सहन करना पड़ेगा। जंतुर्देहं उपपद्यते पुंसरेतः कणाश्रय, तो फिर इस प्रकार संघर्ष चलेगा प्रकृति के साथ। मनसष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृतिं स्थानि कर्षति, तो इस संघर्ष चलेगा, उसको ये समाप्ति नहीं है। तो एक ही समाधान है कि शरणागति। अब जब तक हम सर्विस नहीं करते हैं, विदाउट सर्विस देयर इज नो सरेंडर। हम यदि सोचेंगे हम तो शरणागत हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सरेंडर। और जो सरेंडर नहीं है उसका कैसे शेल्टर है, कैसे आश्रय है। विदाउट सरेंडर देयर इज नो शेल्टर। माम एकं शरणं व्रज कहते, तो सब फिर तो आश्रय देते हैं ना कि मैं आश्रय दूंगा। और जो सरेंडर नहीं है उसको कैसे शेल्टर मिलेगा। तो इसलिए सर्विस से शुरू करना चाहिए। क्या है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, और आंतरिक पुकार ये सेवा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसके कोई प्रश्न है। नहीं आप खाली बोलिए।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज कार्तिक के सेमी फाइनल डे में श्री बंकटेश्वर, श्री काशेश्वर पंडित जी और श्री जो है भूगर्भ स्वामी जी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको वैष्णव संघ प्रदान किया। और जैसा आपने प्रश्न की बात कहा कि सेवा से जीवन प्रारंभ करना चाहिए, तो सेवाएं कितने प्रकार की हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, और किन प्रकार की सेवाओं को उत्तम या अधम माना गया है, कृपया इसके संदर्भ में प्रकाश डालें। हरे कृष्ण।
बहुत उत्तम प्रश्न है आपकी। सेवा 9 प्रकार की है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मा निवेदन। लेकिन इसको सेवा तभी माना जाता है, अगले श्लोक में श्री प्रह्लाद जी कहते हैं, इति पुंसार्पितः विष्णो भक्ति सेत नवलक्षणम, तभी इसको भक्ति माना जाता है जब इस सेवा कार्य करके इसको समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाञ्च अविस्मृति करोति यत्तत् सकले परस्मै नारायण इति समर्पयेत। जब ये भगवान के लिए वा गुरु के लिए अर्पित होता है तब इसको सेवा के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसमें कोई उत्तम और अधम नहीं है, तो सभी प्रकार की सेवा में परफेक्शन मिल सकता है। श्रवण से परीक्षित महाराज को जैसे परफेक्शन मिला, उसी प्रकार कीर्तन से सुखदेव गोस्वामी को, उसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी परफेक्शन मिला पाद सेवन से। तो सभी सेवा में परफेक्शन है, इसलिए उत्तम मध्यम नहीं है। परंतु एक साधक के लिए चैतन्य महाप्रभु का है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जो साधक अवस्था में हम करते हैं तो उसलिए पहला हम श्रवण से करना चाहिए, श्रवण कीर्तन से। लेकिन सभी सेवा में हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परफेक्शन मिल सकती है, इसलिए कोई नहीं होना नहीं।
तो बस थैंक यू प्रभु जी, आपने कंस जैसे दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कैसे हो इस कार्तिक के दामोदर ऊर्जा व्रत में हम सबको आजादी दिया, आपकी पूरी पूरी हृदय से हम प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद आपको भी, हरे कृष्ण। और किसके कोई प्रश्न है? सब लोग प्रसाद की प्रतीक्षा में है। यस माता जी, माता जी का एक कमेंट है कि सेवा भक्तों की सेवा से होना चाहिए, लेकिन भक्तों की सेवा करने के लिए भी योग्यता चाहिए। जैसे हम बहुत सारी कमाई करते हैं ना अच्छे से बिजनेस होने पर, और थोड़ा असावधानी होने पर भी बहुत घाटा लगता है। हालांकि भगवान की सेवा से महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा, लेकिन भक्तों की सेवा सावधान मत है, बंदो मुही सावधान मत है। यदि सावधानी नहीं है तो बहुत अपराध होगा और हम भक्ति में गिर सकते हैं। हालांकि कभी कभी उच्च कोटि के जो वैष्णव होते हैं तो अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी चरण रज उस अपराध को लेता है। तो हम लोग नाम से शुरू करें और भक्तों की भी सेवा करना चाहिए, दोनों प्रकार की। हम यदि भक्त नाम सेवा को छोड़कर सिर्फ हम कहीं भक्त सेवा करेंगे तो भाव नहीं रहेगा। जैसे कभी कभी कनिष्ठ भक्त बड़े बड़े गुरुओं की सेवा करते हैं और गुरु की कमियों को देखने के लिए, फिर क्योंकि हमारे अंदर वो कंटामिनेशन है तो फिर अपराध होता है। इसलिए पहला है जो शास्त्र निर्णय लिया है कि तो क्या करना चाहिए, सेवन मुखे ही जीवा आदो, जब करे और साथ साथ भक्तों की सेवा करें, फिर हमारी मनोभावना अच्छी बनी रह सकती। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, इताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।